તારીખ 12/3/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 532
રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 569 ચાલતા હે જો બાત ચલ ગઈ ઉસમે મુમુક્ષુ કો આત્મકલ્યાણ કે વિષય મેં માર્ગદર્શન દિયા અબ સ્વયં કે પરિણામ મેં લિખ રહે હૈ કે હમકો ભી એ સાંસારિક પ્રવૃત્તિ સુહાતી નહીં હૈ જો ભી વ્યવસાય આદિ કરના પડતા હૈ वो बंधन लगता है और उस बंधन से हम छूटने के लिए बहुत तड़पते हैं। ऐसे विषय में हम हमारी शिथिलता है ऐसा निश्चय रखते हैं। पुरुषार्थ तीव्र होने पर भी शिथिलता दिखने का कारण कि वो अपने को शीघ्र अतिशीघ्र रूप से पूर्ण पद की प्राप्ति करने के लिए बहुत लालायक थे, इसलिए शिथिलता लगती है। मुमुक्षु को ये शिथिलता को शिथिलता के रूप में नहीं ग्रहण करना है, लेकिन इनकी महानता के रूप में ग्रहण करना है। ऐसे विषय में और भी थोड़ी बात की है कि अनेक प्रकार के महापुरुषों के जो चरित्र होते हैं उन चरित्र को किस दृष्टिकोण से समझना चाहिए। कथन योग का विषय लिया है कि जनक आदि उपाधि में रहते हुए भी आत्म स्वभाव में रहते थे, ऐसे आलंबन के प्रति कभी भी बुद्धि नहीं जाती। जनक महाराजा जो रामचंद्र जी के श्वशुर थे, महाज्ञानी थे, इन जमाने में ज्ञानी के एक घर में अनेक व्यक्ति मिलती थी। जैसे रामचंद्र जी भी ज्ञानी थे तो सीता जी भी ज्ञानी थे, इनके पिताजी भी ज्ञानी थे, एक एक घर में ज्ञानी अनेक होते थे। आज जैसा युग नहीं है, आज जैसा जमाना नहीं है कि अरबों में कोई एक ज्ञानी मिले, करोड़ों में नहीं मिलता, अरबों में एक ज्ञानी मिलता है। अब 6 अरब की हमारी आबादी है विश्व की, उसमें 6 ज्ञानी मिलना मुश्किल है, ये बात है। उस जमाने में चतुर्थ काल में एक एक परिवार में अनेक ज्ञानी थे। ऐसे जनक राजा थे, बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी थे, तो जनक विदेही के नाम से आज भी लोग उनको जानते हैं। विदेही माने क्या, कि देह होते हुए भी देहातीत दशा जिसकी होती है, ऐसी आत्मामय दशा, ऐसे आत्मा की तीव्र अध्यात्म दशा में वो रहते थे, तो उनको कहते थे वो जनक विदेही है। देह होते हुए भी उसका देह गिना नहीं जाता, इसलिए गिना नहीं जाता कि उनके परिणाम देह में लगते नहीं थे। और वे राजकाज में रहते थे, तो राजकाज में रहते थे फिर भी वो बात गिनने में नहीं आती थी, वो तो आत्म स्वभाव में रहते थे। राज नहीं करते थे, आत्म स्वभाव में रहते थे। तो जनक राजा ने जैसे राज का कारोबार करते हुए भी आत्म स्वभाव में वो रहने रहते थे, वैसे हम भी व्यापार आदि करते करते आत्म स्वभाव में रहेंगे। ऐसा आलंबन हम कभी किसी के लेंगे नहीं, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है, कारोबार में हमारी रुचि नहीं है। तो दूसरे ज्ञानी कारोबार में रहे थे, ऐसा आलंबन लेने का हमारा अभिप्राय नहीं होता कभी। रहते हैं, व्यापार करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन अभिप्राय विरुद्ध अभिप्राय नहीं है। और अभिप्राय नहीं होने से दूसरे ज्ञानी के विषय में भी हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं रहता, तो फिर कैसा अभिप्राय रहता है कि श्री जिनेंद्र जैसे जन्म त्यागी भी छोड़कर चल निकले। तीर्थंकर जिनेंद्र देव, वो तो पूर्व भव से ज्ञान लेकर आते हैं, तीन ज्ञान लेकर आते हैं, मति श्रुत और अवधि, तीन ज्ञान होते हैं जन्म से ही। तो जन्म से वो त्यागी जैसे रहते हैं, वो भी होते हैं तो राजपुत्र होते हैं। तीर्थंकर का जन्म कोई साधारण परिवार में नहीं होता, वो राजा के वहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म से त्यागी जैसा इसका जीवन होता है, फिर भी वो रहे नहीं इसमें, वो छोड़कर चल निकले। ऐसे भय के हेतु रूप उपाधि योग की निवृत्ति यह पामर जीव करते करते काल व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा, ऐसा भय जीव के उपयोग में रहता है, क्योंकि यही कर्तव्य है। देखिए ज्ञान दशा में भी कैसी बात लिखी है कि भय के हेतु रूप उपाधि योग है। ये जो व्यवसाय आदि उपाधि करते हैं उसमें हमारा उपयोग जाता है, वो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। इस व्यवसाय को छोड़ करके निवृत्ति ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करते करते ही हमारा समय जाता है। 28 साल की उम्र हो गई, बहुत लग गया उनको, 28 साल की उम्र में तो बहुत हो गई ऐसा लगता है। आजकल तो 25 साल के बाद तो लड़का आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, कमर्शियल लाइफ में आता है, दुकान छोड़ने की तैयारी में आ गए थे। और ऐसा लगता है कि इसमें हमारा इतना काल जाता है, तो कहीं ये आत्मकल्याण से विरुद्ध पर हमारी परिस्थिति लगती है हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भय आत्मकल्याण आत्मा का अकल्याण होता है, ऐसा भय हमारे उपयोग में मैंने सावधानी में वर्तता है, ऐसी सावधानी हमको रहा करती है। और ये सावधानी ही कर्तव्य है, ऐसी सावधानी होनी ही चाहिए साधक को, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हम छोड़ देंगे। हम नहीं छोड़ रहे हैं उसका खेद उसको आना चाहिए। हाँ, ये ज्ञानी दूसरी चीज से नहीं डरते, लेकिन आत्मा का अकल्याण हो उससे डरते हैं अवश्य। भवभीरु होते हैं, भव भ्रमण नहीं करना है। जो राग द्वेषादि परिणाम अज्ञान के बिना संभवित नहीं है, उन राग द्वेषादि के परिणामों के होते हुए भी सर्वथा जीवन मुक्तता मानकर जीवन मुक्त दशा की जीव असाधना करता है, ऐसी प्रवृत्ति करता है, ये निश्चयाभासी को ऐसा हो जाता है कि जो राग द्वेषादि परिणाम अज्ञान बिना संभवित नहीं होता। मैंने ऐसा राग द्वेष तो चालू है, मैंने तीव्र रस से राग द्वेष होता है वो तो अज्ञान दशा में ही होता है, और ऐसा राग द्वेष चालू होते हुए भी जीव अपने को मानता है कि हम तो मुक्त हो गए, उस श्रद्धा का विषय को पकड़ करके कि हम तो कृतकृत्य है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, मुक्त है, हम तो बंध मोक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तो पर्याय का विषय है। ऐसा लेकर के राग द्वेष में वो तन्मय रहता है, तो जो जीवन मुक्त दशा जिसकी हुई, ऐसे जो मुक्त आत्माएं हैं उनकी उसमें असातना होती है, उसकी मजाक होती है कि खुद तो तीव्र राग द्वेष में पड़ा है और मान लेता है कि मैं तो जीवन मुक्त दशा में हूँ, मेरी तो मुक्ति हो गई है, मुझे मुक्ति करना फरना नहीं है। तो ये निश्चयाभास होता है उसमें, और वो प्रवृत्ति जीव को करनी वो बिल्कुल अनुचित है, नहीं करनी चाहिए। सर्वथा राग द्वेष परिणाम की परीक्षीणता ही कर्तव्य है, जीव को राग द्वेष क्षीण करना ही चाहिए, उसका क्षय करना ही चाहिए, और सम्यक पुरुषार्थ से उसका क्षय करना चाहिए। अब कुछ सिद्धांतिक बातें लिखते हैं कि जहां अत्यंत ज्ञान हो वहां अत्यंत त्याग का संभव है। अत्यंत ज्ञान मैंने परिपूर्ण ज्ञान, जहां पूर्ण ज्ञान होता है वहां अत्यंत माने पूर्ण त्याग होता है। ऐसा नहीं होता कि केवल ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो और अत्याग दशा हो, त्याग नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो, थोड़ा भी नहीं होता, अधूरा त्याग भी वहां नहीं होता। मतलब परिपूर्ण त्याग होने के बाद तो केवल ज्ञान होता है, लेकिन लिया यहां से कि जहां परिपूर्ण ज्ञान होता है वहां परिपूर्ण त्याग होता ही है। इसलिए केवल ज्ञानी को कुछ भी परिग्रह होवे ऐसा नहीं बनता, केवल ज्ञानी को कुछ भी परिग्रह होवे ऐसा नहीं बनता, वस्त्र या अलंकार या कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण ज्ञान है वहां पूर्ण त्याग ही होता है, सैद्धांतिक बात है। पूर्ण ज्ञानी को पूर्ण त्यागी के रूप में ही देखा जाता है, पूर्ण ज्ञानी को परिग्रही के रूप में कभी भी देखा नहीं जाता। जहां अत्यंत ज्ञान हो वहां अत्यंत त्याग संभव है, और अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान किसी को प्रकट भी नहीं होता। तिलतुष मात्र परिग्रह का त्याग होता है तभी पूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान इसके पहले किसी को नहीं होता है। परिग्रहवंत दशा में किसी को भी केवल ज्ञान होता नहीं है। वो आता है ना, भरत चक्रवर्ती को अपने महल में केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं बनता। और एक कथा आती है, ऐसा नहीं बनता है। पहले वो दीक्षा अंगीकार करते हैं, अंतर्बाह्य साधु दशा पहले हो जाती है, फिर मोक्ष दशा आती है बाद में। अंतर्बाह्य साधु की दशा आए बिना पहले केवल ज्ञान हो जाए ऐसा कभी नहीं बनता है। कृपाल देव लिखते हैं, अत्यंत त्याग हुए बिना अत्यंत ज्ञान संभवित होता ही नहीं। क्यों? कि जो अत्याग दशा है, यानी पर पदार्थ को ग्रहण करने का जो परिणाम है, वो स्वयं ज्ञान को आवरण करने वाले ज्ञानावरणी के बंध रूप परिणाम होते हैं। ज्ञान को आवरण करता है वो परिणाम। इसलिए केवल ज्ञानी कभी भी कुछ ग्रहण करने का परिणाम करता है वो बात संभव नहीं है। केवल ज्ञानी हमेशा शुक्ल ध्यान में विराजमान रहते हैं, ध्यानस्थ अवस्था में ही होते हैं, बातचीत करने की अवस्था में भी नहीं होते। ये जो भगवान को वाणी होती है वो ध्यानस्थ अवस्था में होती है, बिना इच्छा होती है। वो सहज ओमकार नाद चालू हो जाता है, अपने आप चालू होता है वातावरण में, अपने आप बंद हो जाता है। दिन में 4 दफा ऐसा होता है समय उसरण में। भगवान को इच्छा नहीं होती है, इनको ऐसा समझाओ, उनको ऐसा समझाओ, ऐसा विकल्प राग केवल ज्ञानी को कभी नहीं होता। इसलिए लिखा है कि अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्री तीर्थंकर ने स्वीकार किया है। मैं लिखता हूं लेकिन तीर्थंकर ने ऐसा कहा है, इसलिए यहां हमने लिखा है। ये बात तीर्थंकरों ने की है, इसलिए कोई तीर्थंकर ऐसा नहीं कहेगा कि किसी को त्याग नहीं था और केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कभी बात करने वाले नहीं है। तीर्थंकर ने ऐसा स्वीकार किया है और यही वस्तु का स्वरूप है। आत्म परिणाम से जितना अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास निवृत्त होना, उसे श्री जिनेन्द्र त्याग कहते हैं। अब त्याग का प्रारंभ कहाँ से होता है और प्रथम त्याग किसको कहते हैं, तो आत्मा के जो परिणाम है, अपरत्व रूप, आत्म रूप, अपनत्व रूप जो परिणाम है, वो परिणाम दूसरे पदार्थ के साथ तन्मय रूप से, तद आत्म रूप से, यही मेरा आत्मा है, यही मेरा है, ऐसा जो अध्यास मैंने भ्रम है, वो भ्रम का नाश होना, यही सबसे पहला त्याग है। पदार्थ का त्याग, वो त्याग नहीं बताया यहाँ कि इसका, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, व्यापार को छोड़ दिया, उसको त्याग नहीं बताया। सबसे पहले अध्यास का त्याग होता है। अध्यास माने क्या? अपनत्व का त्याग होता है। चीज चीज की जगह पड़ी है, मेरी है या मेरी नहीं है, उतना ही समझना है। मेरी मानने से या मेरी जानने से मेरी होती नहीं, लेकिन ऐसा होने से कर्मबंध अवश्य होता है। पर चीज वहां की वहां पड़ी है, चीज चीज की है, मैं अपने में हूं, मेरे में चीज नहीं, चीज में मैं जाता नहीं, तो ये मेरी है ऐसा जो अध्यास था वो छूट गया, उसको जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि त्याग उसने किया। यहां से त्याग चालू हुआ, इस प्रकार से त्याग की शुरुआत होती है। चीज को छोड़कर त्याग करना वो त्याग नहीं बोले, चीज है फिर भी उसमें अपनत्व का त्याग हो गया, वही त्याग है। ये भ्रम था जीव का, मेरापना उसमें जो लगता था वो जीव का भ्रम था और कुछ नहीं था, वो भ्रम छूट गया। वही यहां से त्याग शुरू होता है। वह तदात्म अध्यास निवृत्ति रूप त्याग होने के लिए, क्या ऐसा अध्यास का नाश हो जाए, उस रूप जो त्याग है, ऐसा जो त्याग का स्वरूप है, ऐसा त्याग होने के लिए ये बाह्य प्रसंग का त्याग भी उपकारी है। ये प्रयोग का विषय लिया कि अध्यास छोड़ने के लिए कोई त्याग का प्रयोग करता है तो वो करने लायक है, वो उपकारी है, यानी निमित्तभूत है। जैसे उपवास करते हैं हम लोग तो उसमें बाह्य त्याग होता है भोजन का, आहार का, तो हम खाते हैं और हमने खाना छोड़ दिया, हम खाते थे और हमने खाना छोड़ दिया, ये भ्रम रखकर हमने उपवास किया है तो ये त्याग त्याग नहीं है और ये त्याग उपकारी भी नहीं है जीव को। लेकिन ऐसा प्रयोग करना चाहिए, जब उपवास करना ही है तो कैसे करना, कि हमारी आत्मा जो है वो अनाहार स्वरूप ही है, आत्मा जो है वो अनाहारक स्वरूप है और आहार को ग्रहण भी नहीं करता और आहार का त्याग भी नहीं करता। इसलिए आज हमारे आहार ग्रहण नहीं करने की जो वृत्ति सहज चल रही है उसमें हमने आहार ग्रहण किया और छोड़ा, ऐसा अध्यास छोड़ने के लिए हमारी वृत्ति काम कर रही है, अध्यास छोड़ने के लिए पद नहीं हमको, क्योंकि हमारे में पदार्थ नहीं है, पदार्थ में दूसरे पदार्थ में हम नहीं है। थाली में जो भोजन आता है ये मुंह के द्वारा पेट में जाता है लेकिन आत्मा में नहीं जाता। थाली में जो परमाणु भोजन के थे वो परमाणु उधर में गए, पेट में गए, आत्मा में गए कहें कि आत्मा में नहीं गए, एक परमाणु भी आत्मा में नहीं गया। लेकिन मैंने खाया ये अभिप्राय झूठा है, मिसकॉन्सेप्ट, ये अध्यास है, उसको छोड़ना है। चाहे खाते खाते छोड़ो, चाहे खाने का छोड़ने छोड़ करके छोड़ो, लेकिन छोड़ना है पहले अध्यास। तो खाते खाते छोड़ो वो कैसे बनता है कि खाने में रस आएगा तो मैंने खाया वो बात तो छूटेगी नहीं। जिसको खाना खाने में रस आता है उनको तो मैंने नहीं खाया वो बात कहाँ से आएगी, जो ज्ञाता दृष्टा परिणाम में आ जाएंगे, साक्षी भाव में आ जाएंगे, उनके जो परिणाम है वो भिन्न परमाणु की और शरीर की भिन्न क्रिया को देखता रहेगा और अनुभव करेगा कि ये परमाणु मेरे आत्मा में आए नहीं, मैंने उसको खाए नहीं, मैंने उसको भोगे भी नहीं है। तो मैंने उस भोजन का भोग किया वो अध्यास छोड़ने की बात है, उसके लिए उपवास करो, अध्यास छोड़ने के लिए उपवास करो तो ये उपवास उपकारी है। अगर अध्यास छोड़ने का कोई परिणमन नहीं हो गए और मैंने आहार का भोजन का त्याग किया है वो तो एक नया अध्यास खड़ा किया है। उपवास करके भी अध्यास को मजबूत किया, पहले खाना खाते खाते अध्यास को मजबूत करते थे, अब उपवास करते करते अध्यास को मजबूत करने लग गए। क्या फर्क पड़ा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। क्या कहा कि यह तादात्म अध्यास निवृत्ति रूप त्याग, त्याग की परिभाषा क्या किया, तदात्म अध्यास का नाश होना, उस रूप जो त्याग है, ऐसा त्याग होने के लिए यह बाह्य प्रसंग का त्याग, पर पदार्थ का किसके साथ प्रवृत्ति का अभाव, पर पदार्थ की प्रवृत्ति का अभाव, वो त्याग भी उपकारी महा उपकारी माना गया है। क्यों कि उसमें अध्यास का त्याग करने का प्रयोग चलता है, इसलिए उपकारी है और कार्यकारी है, उपकारी है और कार्यकारी है। बाह्य प्रसंग के त्याग के लिए अंतर त्याग कहा नहीं है। बाह्य प्रसंग का त्याग कर लिया इसलिए उसको अंदर में परिणाम नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। बाहर में त्याग करते हैं और अंदर में उसका रस पड़ा है, उसका क्या करोगे? जिसने अध्यास छोड़ा नहीं वो बाह्य त्याग करेगा और रस अंदर रह जाएगा। और ये बात साबित करने की आज जरूरत नहीं है। जैसे कि संप्रदाय में लोग उपवास करते हैं तो उपवास करने के पहले क्या हालत होती है कि अच्छी तरह खा लो भाई, कल नहीं खाना है। और उपवास पूरा हो जाए तो पालना करते हैं, तो उसमें जो सामान्य रूप से हम खाते हैं इसे कई प्रकार की आइटम बनाने में आती है। क्या हुआ ये क्या साबित करता है कि हमने उपवास किया लेकिन खाने का रस बिल्कुल छोड़ा नहीं है? तो ये उपवास उपवास है ही नहीं। खान पीन का रस छोड़ने के लिए उपवास किया जाता है और उसमें तो आगे पीछे बढ़ाया, बीच में खाली जगह रखी तो परिणाम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। क्योंकि शरीर धर्म ऐसा है कि टाइम पर जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो ही जाती है, जिसको हम कहते हैं कि भूख लगी, प्यास लगी, तो परमाणु की गर्मी वहां होती है। उस परमाणु की गर्मी अंदर में होती है उसका अनुभव को हम कहते हैं कि भूख लगी। बाद में तो परमाणु की उष्णता है वहां, जिसको जठरा वो शरीर धर्म, जिसको खाने का रस है उनको अपने परिणाम को दबाना पड़ेगा कि आज हमने उपवास किया, आज नहीं खाएंगे, आज नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाएंगे, नहीं खाना है, खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया, चलेगा तो परिणाम तो बिगड़ेगा। उपवास करें और परिणाम बिगाड़े, धर्म तो नहीं होवे, मिथ्यात्व और अशुभ भाव ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए। ये अज्ञान से जो क्रिया करने में आती है उसमें कितना नुकसान होता है, वो समझ का अभाव होने से, ज्ञान का अभाव होने से। करते हैं धर्म के पाने के लिए या कर्म खिराने के लिए, लेकिन कर्म तो खिरते नहीं हैं, ज़्यादा बंधते हैं। लाभ तो कुछ होता नहीं, नुकसान ज़्यादा हो जाता है, ये बात बनती है। इसलिए यहाँ कहा कि बाह्य प्रसंग के त्याग के लिए अंतर त्याग नहीं कहा। अंतर त्याग कोई बाह्य प्रसंग के त्याग के लिए नहीं कहा है, ऐसा है वास्तव में तो ऐसा है, फिर भी प्रयोग करने के इस जीव को अंतर त्याग के लिए बाह्य प्रसंग की निवृत्ति को कुछ भी उपकारी मानना योग्य है। कुछ भी मैंने अगर वो अध्यास का त्याग करने का प्रयोग करता है तो उपकारी मानना योग्य है, लेकिन परिणाम बिगड़े या मिथ्यात्व को दृढ़ करे तो वो बाह्य त्याग उपकारी बिल्कुल नहीं है। अब फिर अपने विषय में बात करते हैं कि हम तो नित्य छूटने का विचार करते हैं, ये व्यवसाय वगैरह प्रवृत्ति से हम तो नित्य छूटने का विचार हमको आता है, करते हैं मतलब ये विचार हमको आता रहता है। और जैसे वह कार्य तुरंत पूरा हो वैसे जाप जपते हैं। मैंने बार बार, जैसे जाप बार बार किया जाता है ऐसे हमको जाप जपते हैं कि कैसे झंझट से छूटे, कैसे उपाधि से मुक्त हो जाए। क्योंकि धर्मात्मा का जीवन अगर निवृत्ति रूप होता है तो कहीं मुमुक्षु जीव को ये उपकारी होते हैं। अगर इनका जीवन प्रवृत्तिमय रहता है, निवृत्ति रूप नहीं रहता है, तो अन्य जीवों को वो प्रसंग का समय नहीं बचेगा इनके पास। तो दूसरे जीव का कल्याण के आगे ये जो प्रवृत्ति में जो कुछ होता है उसकी क्या कीमत, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत होती नहीं है। प्रवृत्ति में क्या होता है, कुछ पैसा आता है या कुछ जाता है, ज्यादा से ज्यादा आता है ले लो ना, तो उसकी कीमत गिने या दूसरे जीव का आत्मकल्याण हो जाए ऐसा प्रसंग बने इसकी कीमत गिने, किसकी कीमत गिने, किसकी कीमत गिनना चाहिए। तो धर्मात्मा तो निवृत्त रहे यही लाभ का कारण होता है। और खुद को भी उस बात का ख्याल था कि वो पत्र नहीं लिख रहे हैं, व्यस्त रहना पड़ता है, वो बात धार्मिक प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। नित्य छूटने का विचार करते हैं और जैसे यह कार्य तुरंत पूरा हो वैसे जाप जपते हैं। इसका मतलब कि हमको छूटने का बहुत परिणाम होता है। यद्यपि ऐसा लगता है कि वह विचार और जाप अभिरूप अभी तक तथा रूप नहीं है, शिथिल है, हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि हम छूट नहीं रहे हैं तो लगता है कि हमारी शिथिलता है। वो शिथिलता लिखने में वो उनकी तो मानता ही है, उनको खुद की तो मानता ही है, लेकिन जो लगता है, जो फील होता है वो लिख देते हैं, सरलता से लिख देते हैं, नम्रता से लिख देते हैं। और इसमें एक सिद्धांत भी साथ साथ है कि जब किसी भी परिणाम तीव्र हो जाता है धार्मिक लाभ के हेतु, तो कुदरती ऐसी ही व्यवस्था बैठती है। और जहां तक शिथिलता कुछ रहती है वहां तक देर लगती है, ये भी एक कुदरत की व्यवस्था है। जैसे कोई ज्ञानी है, सभी ज्ञानी को मुनि होने की भावना आती है, आए बिना नहीं रहते। मुनिराज का जो स्वरूप है उसमें जो सुख शांति है और उसका जो पुरुषार्थ है और प्रति समय मोक्ष दशा के प्रति उनका जो परिणाम की गति होती है, स्थिति होती है, वो देखते हुए ज्ञानी को उस दशा की भावना आए बिना नहीं रहती, नियम से आती है। और कृपालु देव ने तो अपूर्व अवसर गाया भी है, एक ज्ञानी को जो होता है वो सभी ज्ञानी को होता है, ये सामान्य बात है सबों के लिए। तो फिर प्रवृत्ति में रहना कहाँ से सुहाएगा, जब इनकी अभिलाषा और भावना ही मुनि दशा की है तो प्रवृत्ति तो किसी को सुहाएगी नहीं। इसलिए लगता है कि ये जो देर हो रही है, व्यवसाय छूटने में देर हो रही है, उसमें कुछ न कुछ हमारी शिथिलता है, वरना छूट ही जाता। तीव्रता आती तो छूटे बिना नहीं रहता। थोड़ा यहाँ पर विषय सूक्ष्म है, थोड़ी सूक्ष्मता में जाए तो कि कोई ज्ञानी पुरुष है, और जैसे सभी ज्ञानियों को मुनि दशा की भावना होती है, तो भावना होती है और मुनि पद में लेने में कोई लेते हैं कोई नहीं लेते हैं, देर सवेर भी होती है। इस भाव में नहीं लेते हैं तो बाद के भाव में लेंगे, लेंगे तो सही, इसकी जो भावना तो निष्फल जाने वाली नहीं है, वो सही भावना है, इसलिए आत्मा में से उत्पन्न हुई भावना है इसलिए। लेकिन जो भावना तीव्र होती है तो जो प्रारब्ध के परमाणु हैं वो खिर जाते हैं। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसके सामने, वो बताएंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि विषय की सूक्ष्मता क्या है। तो कोई ये कहेंगे कि ज्ञानी को मुनि दशा की भावना है, परंतु पूर्व प्रारब्ध ऐसा है इसलिए वो त्यागने इसका त्याग नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। उनकी भावना जब चरम सीमा को प्राप्त होती है तब ये व्यवस्था कुदरत बिठाती है। जो प्रारब्ध के परमाणु, संचित कर्म के परमाणु जो सत्ता में थे, फटाफट गिर जाते हैं और बाह्य त्याग की दशा में आ जाते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको दो बात साथ में है, उनका प्रारब्ध योग भी ऐसा है कि जिसमें व्यवसाय आदि की परिस्थिति खड़ी है, पेंडिंग है, और उनको मालूम भी है कि ये परिस्थिति प्रारब्ध भी पूरा नहीं रहा है और हमारा परिणाम भी नहीं चल रहा है। जैसे निवृत्त होने में दोनों प्रकार एक साथ होता है, ऐसे प्रवृत्त होने में भी दोनों बात एक साथ रहती है और वह उनको ख्याल आता है, ज्ञानी को इसका पता चल जाता है कि हम क्यों प्रारब्ध की प्रवृत्ति में बैठे हैं। एक तो हमारा पूर्व कर्म भी चालू है, दूसरा हमारा जो परिणाम है वो चरम सीमा को प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। चाहते नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है वो एक हकीकत है, और इस हकीकत में जो भी गिनो वो शिथिलता ही गिननी चाहिए, गिननी पड़ेगी, वो बात है। इधर बहुत सूक्ष्म विषय है, यहां भावना तीव्र होती है त्याग की तो पता चल जाता है कि प्रारब्ध का युग भी छूटने जा रहा है, अब प्रारब्ध लंबाने वाला नहीं है। कृपालु देव ने को आगे लिखते हैं एक पत्र में, मेरा ग्रंथ है, मेरा वाला जो है, हाँ, अंदाज निकाला है तुमने अपनी दशा का, सात सौ आठ है। हाल दो वर्ष तक 29वें वर्ष में लिख रहे हैं, पानो 518 708 नंबर नौ पत्र से ને એમાં 518 પાને વચ્ચે છે. એની ઉપરના લીટીઓ છે. હાલ 2 વર્ષ સુધી તે યોગ સાધન વિશેષ કરી ઉદયમાં આવે તેમ દેખાતું નથી. પછી ઉપરનો પેરેગ્રાફ લઈ લઈએ, પાનો ગુજરાતીમાં છે 518 પેરેગ્રાફ છે. એ રીતે જો મૂળ માર્ગ પ્રગટતામાં આણવો હોય તો પ્રગટ કરનારે માર્ગને પ્રગટ કરનારે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવો યોગ્ય, એટલે મુનિ દશા લેવી યોગ્ય. કેમ કે તેથી ખરેખરો સમર્થ ઉપકાર થવાનો વખત આવે, બીજાને લાભ થવાનો વખત આવે. વર્તમાન દશા જોતા પોતાની અને સત્તાના કર્મો ઉપર દ્રષ્ટિ દેતા વિજ્ઞાન થઈ જાય છે પોતાને. વર્તમાન દશાનું જ્ઞાન અને સત્તાના કર્મોનું જ્ઞાન જોતા કેટલોક વખત પછી તે ઉદયમાં આવે આવવું અસંભવે છે. અત્યારે ઈચ્છા છે છતાં પણ બાહ્ય ત્યાગ થાય એ પરિસ્થિતિ દેખાતી નથી. વર્તમાન દશા જોતા અને કર્મની સત્તા જોતા, કર્મની સત્તા દેખાઈ જાય છે. જો અમને સહજ સ્વરૂપ જ્ઞાન છે, આત્માનું સહજ સ્વરૂપ જ્ઞાન તો અમને છે, જેથી યોગ સાધનની એટલી અપેક્ષા નહીં હોવાથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરી નથી. યોગ સાધન એટલે ધ્યાન ને યોગના પ્રયોગો કરવાની અમને કાંઈ જરૂર નથી. અમને તો આત્મામાં ઉપયોગ લાગે છે. તેમ તે સર્વસંગ પરિત્યાગમાં અથવા વિશુદ્ધ દેશ પરિત્યાગમાં સાધવા યોગ્ય છે. અને ધ્યાન અને યોગની વિશેષ ક્રિયા સાધવી હોય તો કાં સાધુ દીક્ષા લઈને અથવા પંચગુપ્તાનમાં એ કરવાયું. એથી લોકોને ઘણો ઉપકાર થાય છે. જો પોતાને નિવૃત્તિ આવે તો બીજા લોકોને ઘણો ઉપકાર થાય છે. જોકે વાસ્તવિક ઉપકારનું કારણ તો આત્મજ્ઞાન વિના બીજું કોઈ નથી. મૂળ તો મૂળ કારણ તો આત્મજ્ઞાન છે, તે છે. હવે લખે છે પોતાનો અંદાજ કે હાલ 2 વર્ષ સુધી તો તે યોગ સાધન વિશેષ કરી ઉદયમાં આવે તેમ દેખાતું નથી. એટલે હજી 2 વર્ષ નીકળી જશે. 2 વર્ષ પહેલાં તો કાંઈ ત્યાગ થાય એવું દેખાતું નથી, પોતાની દશા જોતા અને સત્તાના કર્મો જોતા. તેથી ત્યાર પછીની કલ્પના કરાય છે. આ પણ એક કલ્પના છે, એક્ઝેક્ટ જ્ઞાન નથી, આ કલ્પના છે. કેમ કે 3 થી 4 વર્ષ તો તે માર્ગમાં ગાળવામાં આવ્યા હોય તો 36મે વર્ષે સર્વસંગ પરિત્યાગી ઉપદેશનો વખત આવે. કદાચ દેશ ત્યાગ કરી પંચમ ગુણ સ્થાનમાં તો 3-4 વર્ષ તો એમાં નીકળી જશે, અને મુનિ દશા તો 36મે વર્ષે આવશે. આ એક કલ્પના કરી છે પોતે, કેમ કે 36 વર્ષનું આયુષ જ નહોતું. આયુષ 33 વર્ષ અને 5 મહિના અને 20 દિવસનું હતું. અને લોકોનું શ્રેય થવું હોય તો થાય, એ પણ જેનું જે એ વખતે કલ્યાણ થવા યોગ્ય હોય તે થાય. આ એક કલ્પના છે અમારી. નાની ઉંમરમાં નાની વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી જિજ્ઞાસા એટલે ભાવના વર્તતી હતી કે મહાવીરનો માર્ગ હું પ્રવર્તાવીશ. નાની ઉંમરે જોરદાર ભાવના, જિજ્ઞાસા એટલે જોરદાર ભાવના આવતી હતી. ત્યાર પછી જ્ઞાન દશા આવી. એ વખતે જ્ઞાન દશા નહોતી, મોક્ષ દશામાં પત્ર લખાયેલો છે. ત્યાર પછી જ્ઞાન દશા આવી અને ક્રમે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ ગઈ. એટલે જે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાની વાત હતી શાંત થઈ ગઈ. પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમાં આવેલા જ્ઞાન દશા થયા પછી તેમની કેટલીક વિશેષતા ભાસવાથી, એટલે પાત્રતા ભાસવાથી, કાંઈક મૂળ માર્ગ ઉપર લક્ષ આવેલો કે આ મૂળ માર્ગ પ્રવર્તાય તો સારો. વિતરાગનો માર્ગ છે જિનેન્દ્રદેવનો, એવું શાસનની પ્રવૃત્તિ થાય તો સારો. અને આ બાજુ તો સેંકડો અથવા હજારો માણસો પ્રસંગમાં આવેલા, તો માણસો ઘણા પછી પરિચયમાં આવ્યા, જ્ઞાન દશાથી આપું છે, જેમાંથી કંઈક સમજણવાળા, બધા નહીં કોઈ કેટલાક કંઈક સમજણવાળા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે એટલે અમારા પ્રત્યે આસ્થાવાળા એવા 100 માણસો નીકળે. હજારો માણસો પરિચયમાં, એમાંથી 100 માણસો અમને સમજે છે એવા છે, ઉપદેશકને એટલે અમને અમને સમજી શકે એવા દેખાય છે અથવા પાત્રતાવાળા દેખાય છે. એ ઉપરથી એમ જોવામાં આવ્યું કે લોકો તરવાના કામે વિશેષ છે. ઘણા લોકોને સંસાર નથી જોતો, સંસારથી તરવું છે એવું છે ખરું, હજી એવા તરવાના કામે લોકો દેખાય છે, પણ તેમને તેવો યોગ બાજતો નથી. પણ એમને કોઈ સત્પુરુષ મળતા, જ્ઞાની પુરુષ મળતા નથી, શું કરે બિચારા. જો ખરેખર ઉપદેશક પુરુષનો યોગ બને તો ઘણા જે મૂળ માર્ગ પામે તેવું છે. જો કોઈ ખરેખર જ્ઞાની પુરુષનો ઉપદેશ મળે તો ઘણા જીવ પામે એવું છે, અને દયાદિનો વિશેષ ઉદ્યોગ થાય એવું છે, અને દયાધર્મ પણ વિશેષ પ્રચાર પામે એમ દેખાવાથી કાંઈક ચિત્તમાં આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો ઘણું સારું, જીનેન્દ્રદેવનો માર્ગ કોઈ પ્રવર્તાવે તો ઘણું સારું છે. કેટલાક જીવોની ભાવના જોતા તરવાના કામે દેખાય છે અત્યારે, માટે કોઈ આવું કામ કરે તો સારું, પણ દ્રષ્ટિ કરતા તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી. નજર દોડાવી છે તો કોઈ દેખાતું નથી, કે કોઈ શાસન ચલાવે એવું દેખાતું નથી, એટલે કંઈક લખનાર પ્રત્યે દ્રષ્ટિ આવે છે એટલે મારા ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે, કે મારામાં શક્તિ છે, યોગ્યતા છે શું, પણ બહારની પરિસ્થિતિ અનુકૂળ નથી, પ્રવૃત્તિમાં ફસાયેલા છીએ એટલે લખનાર ઉપર દ્રષ્ટિ આવે છે. પણ લખનારનો જન્મથી લક્ષ્ય એવો છે, એટલે જન્મા ત્યારથી એવો નિર્ણય વર્તે છે, જુઓ કે એ જેવું એક જોખમવાળું પદ નથી. શાસન પ્રવર્તાવું એમાં કંઈ થોડું જોખમ નથી, ઘણું જોખમ છે. કેમ કે ધર્મનો ઉપદેશ કરનારાને માન બહુ આપે છે લોકો, અને જીવ માનમાં ફસાય છે, માનપાન આપે માનમાં ફસાઈ જાય, બહુ જોખમ છે. જે ઉપદેશકનું પછી લપસણી જગ્યા છે, લપસતા વાર ન લાગે. એ જેવું એક જોખમવાળું પદ નથી, અને પોતાની તે કાર્યની યોગ્યતા જ્યાં સુધી ન વર્તે ત્યાં સુધી તેની ઈચ્છા માત્ર પણ ન કરવી, એટલે ઉપદેશક થવાની ઈચ્છાય ન કરવી શું, અને ઘણું કરીને હજી સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે, તેમણે ઉપદેશક થવાની ઈચ્છા કરી જ નથી. માર્ગનું કાંઈ પણ સ્વરૂપ કંઈકને સમજાવ્યું છે, કોઈ કોઈ જીવો જે નજીક આવ્યા, બહુ સમીપ આવ્યા, એને માર્ગ દેખાડ્યો છે, તથાપિ કોઈને એક વ્રત પછખાણ આપ્યું નથી કે તમે ત્યાગ કરો, એવું અમે કદી કર્યું નથી. કેમ કે અમે પોતે જ ત્યાગ કર્યો નથી, બહારમાં બીજાને ત્યાગનો ઉપદેશ ક્યાંથી આપીએ. અથવા તમે મારા શિષ્ય છો અને અમે ગુરુ છીએ એવું ઘણું કરીને પ્રકાર પ્રદર્શિત થયો નથી, અમારાથી એવો પ્રકાર પ્રદર્શિત નથી થયો કે અમે ગુરુ છીએ અને તમે અમારા શિષ્ય છીએ. કહેવાનો હેતુ એટલો છે કે સર્વસંગ પરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજ સ્વભાવે ઉદયમાં આવે તો કરવી, એવી માત્ર કલ્પના છે. ફરીને કલ્પના શબ્દ વાપર્યો, દીક્ષા લેવાય, મુનિ દશા થાય, અને બાહ્ય શાસન પ્રવર્તવાનો યોગ બને સહજપણે કુદરતે, તો જે થાય તે કરવું. આપણે એક અમારી કલ્પના છે, પાકો પાકો કોઈ અમારા જ્ઞાનમાં વાત આવેલી વાત નથી, કેમ કે એટલું આયુષ્ય જ નથી, એ કલ્પના છે. તેનો ખરેખરો આગ્રહ પણ નથી અત્યારે, એ શાસન પ્રવર્તાવવું છે, જલ્દી જલ્દી ઉપદેશક થઈ જવું છે, એ પણ અમારો આગ્રહ નથી. માત્ર અનુકંપાદી એક અનુકંપાના પરિણામ જરૂર આવે છે, જીવો મોક્ષ માર્ગને પામે અને સુખી થાય અને એમના દુઃખ ટળે એવી અનુકંપા જરૂર થાય છે, તથા જ્ઞાન પ્રભાવ વર્તે છે, તથા અમારામાં જ્ઞાન ઘણું છે, જ્ઞાનનો પ્રભાવ તો વર્તે છે એ ખ્યાલમાં છે. તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ઉઠે છે કે પ્રભાવના કરીએ, એવી વૃત્તિ પણ ક્યારેક ઉઠે છે, અથવા અલ્પ અંશે અંગમાં તે વૃત્તિ છે, એટલે અમારા પરિણમનના અંગમાં એ વૃત્તિ છે કે પ્રભાવના કરીએ જીન માર્ગને, તથાપિ તે સ્વવશ છે, કંટ્રોલ બહાર નથી, કંટ્રોલમાં છે એ પરિણમન અમારું. અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વસંગ પરિત્યાગી થાય, સર્વસંગ પરિત્યાગ આદિ થાય એટલે મુનિ દશા આવે, તો હજારો માણસ મૂળ માર્ગને પામે. કેટલા? હજારો માણસ મૂળ માર્ગને પામી જાય જો અમારી મુનિ દશા આવે તો, એમ કહે છે. અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાધી સદગતિને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે. બોલો, કેટલી શક્તિ છે પોતાની, માપી છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવને વૃત્તિ થાય એવો અંગમાં ત્યાગ છે. એટલે અમે જો બાહ્ય ત્યાગમાં આવીએ તો અમને જોઈને લોકો ત્યાગી થવા માંડે, એટલો અમારા અંગમાં ત્યાગ છે. લોકોને અસર પહોંચે કે એમણે ત્યાગ કર્યો, આપણે ત્યાગ કરવો છે. એ ફલાણું નથી લેતા, અમે નહીં લઈએ. એ આ નથી ખાતા, અમે નહીં ખાઈએ. એમણે આ છોડ્યું, અમે છોડી દેશો. એવી અમારી પરિસ્થિતિ જરૂર છે. શું કે એમને લોકો અનુસરી જાય? શું? હા, વર્તમાન અંગમાં એટલો ત્યાગ છે. અંગમાં એટલે અમારા અંગભૂત છે, અમારી યોગ્યતામાં એ વાત પડી છે, આજે મોજૂદ છે. ભલે બારમાં ત્યાગ નથી કર્યો, પણ અમારી યોગ્યતા એવી છે. આજે પણ અમે એક ચીજ છોડી દઈએ તો ઘણા છોડી દે, એમ કહે છે. શું અરે સાહેબ, મીઠાઈ નથી ખાતા? આપણે નથી ખાતા, છોડો. એ નથી ખાતા, આપણે કેમ ખાઈએ? એવું અમારા અંગમાં છે. શું? હા ઠીક હે, પરિણમન કા અંગ ભી લે સકતે હૈ, પરિણમન કા અંગ ભી લે સકતે હૈ. ઓર પરિણમન કી અસર ઇનકી દેહ કી ચેષ્ટા મેં ભી થી, દોનો બાત સાથ મેં થી. ઉનકી દેહ કી જો દિખાવ થા, દીદાર થા, વો ભી એસા હી થા, બહોત સૌમ્ય થે. કૃપાળુ દેવ કો देखे तो बहुत सौम्य मूर्ति है. तो उनके जो परिणमन जितना सौम्य है, उनकी जो प्रभा है, उनके देह में भी आई है. इसलिए लिखते कि हमारे अंग में वो बात है. धर्म स्थापवानु मान मोटू छे. तो हमें जानिए छे कि धर्मना स्थापक होय एने बहु मोटू मान मळे छे, अने ते माननी स्पृहाथी, हूँ मान मेळवानी लालच थी પણ વખતે આવી વૃત્તિ રહે જીવને. પણ અમારા આત્માને ઘણીવાર તાવી જોતા, તાવ્યો છે અમે તો આત્માને, હો પરીક્ષા કરી છે અમારા આત્માને, તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો દેખાય છે. માન માટે અમે કોઈ ઉપદેશક બનીએ એ વાત અમને લાગતી નથી. અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે, થોડોક એવો પ્રકૃતિ માનની સત્તામાં રહી હશે, તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય ભાસે છે. કેમ કે યથા યોગ્યતા વિના દેહ છૂટી જાય તેવી દ્રઢ કલ્પના હોય તો પણ માર્ગ ઉપદેશ નહીં, બહુ મક્કમ નિર્ધાર છે. નિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે એક એ બળવાન કારણથી, અને એ માર્ગ પ્રભાવનાના બળવાન કારણથી પરિગ્રહાદિ ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે. જો પરિગ્રહ છૂટે તો અમે આ માર્ગ ભગવાનનો માર્ગ છે, જિનેન્દ્ર ભગવાનનો માર્ગ છે, પ્રવર્તાવીએ અને હજારો જીવોને આત્મલાભનું કારણ થાય એવું બળવાન કારણ જાણીને અમને ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ વારંવાર થયા કરે છે. મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો હોય અને સ્થાપવો હોય તો અમારી દશા અત્યારે પણ છે, યોગ્ય છે. પણ જીનોક્ત ધર્મ સ્થાપવો હોય તો હજુ તેટલી યોગ્યતા નથી, એટલે કે ત્યાગ કરવો જોઈએ, મુનિ દશા લેવી જોઈએ. તો પણ વિશેષ યોગ્યતા છે, જ્ઞાન દશામાં પણ વિશેષ યોગ્યતા છે એમ તો ભાસે છે. કેવું મંથન કર્યું છે પોતે. એક ધર્મ પ્રવર્તાવાના વિષયમાં એમાં શું થયું છે કે અંબાલાલભાઈ અને ત્રિભુવનભાઈ વગેરે છેલ્લે છેલ્લે આ બાબતમાં લખતા હતા કે આપની સમર્થતા જોઈને અમને એમ લાગે છે કે આપ જરૂર માર્ગ પ્રવર્તાવી શકો અને આપે પ્રવર્તાવવો જોઈએ, આપ જિનમાર્ગનો ઉદ્ધાર કરો એમ એમના ઉપર એક અંદરથી દબાણ હતું. એમના નજીક આવેલા એમના મુમુક્ષુ ભક્તોનો એના ઉપર એમણે પોતાના અંદરના વિચારો ખોલીને મૂકેલા છે.
Thank you.